हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है इस साप्ताहिक श्री कृष्णा भावनामृत कार्यक्रम में और मैं आशा करता हूं कि आप सभी सुख और स्वस्थ होंगे। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सबको सुखी और स्वस्थ रखें। पुनः मैं आप सबके सेवा में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी द्वारा प्रस्तुत राम कथा पेश कर रहे हैं। लीजिए महाराज जी को।
नर आहार रजनी चर कर रही, नर आहार कर रही तब तो नारी के लिए तो कहना ही नहीं। जो कठोर शरीर वाले पुरुषों को खा जाते हैं तो नारियों को कितना जल्दी खाएंगे, उसमें तो कहना ही क्या। अच्छा, यह भी बात नहीं कि चलो वो आएंगे तो भाग जाओगे कहीं। कपट वेश विधि कोटिक कर, करोड़ों प्रकार के कपटमय वेश बना लेते हैं, पता ही नहीं चलता है कब कहाँ आ गए, तो कहीं से भी पकड़ कर खा जाए। कपट वेश विधि कोटिक कर, लागे यति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाएगा। और पहाड़ का पानी बहुत लगता है, आज भी लोगों का अनुभव है, पहाड़ का पानी लग जाता है, दमा पकड़ लेता है, कितने लोग मर जाते हैं। पहाड़ में बोतल में बंद पानी नहीं मिलेगा, वो तो बंद में जो पानी है वही पीना पड़ता है, कभी कभी पानी बहुत लग जाता है, बीमारी हो जाती है अनेक प्रकार की। लागे यति पहाड़ कर पानी, महा विपत्ति नहीं जाई बखानी। बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां होती हैं वन में, क्या कहूं, कहा नहीं जा सकता, महा विपत्ति नहीं जाई बखानी। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारे नर चोरा। तो बड़े बड़े भयंकर सांप और पक्षी होते हैं वन में, वन में ही भीमसेन को अजगर पकड़ लिया था ना, शहर में तो कम से कम सेफ है, यहाँ तो अजगर पकड़ेगा नहीं। यहाँ तो बाघ भालू आदि से भी भयंकर कारे हैं, ट्रक हैं, प्रतिदिन 10-20 को तो खाते ही रहते होंगे, ऐसा होता होगा ना, 2-4 तो निश्चित रोज खा जाते हैं, ट्रक बस कार। तो घोर वन है, मिस्टर निकर नारी नर चोरा, ऊपर भगवान कहे कि खा जाते हैं राक्षस लोग, अरे से चुराने वाले तो भरे पड़े हैं। मिस्टर निकर, निकर का अर्थ समूह, राक्षसों का समूह है जिनका यही काम है अपहरण करना है। अब तो ये राक्षस अब शहर में भी पहुंच गए, पहले तो केवल वन में रहते थे, अब सब जगह नारी नर चोरा, मनुष्य को नर को उठा ले जाते हैं, चोरी करते हैं और नारियों की चोरी करते हैं। जो किसी की चोरी करे अपहरण कर, लोग राक्षस ही है लेकिन भेष है शब्द मनुष्य का होता, भगवान कह रहे बहुत प्रकार का वेश धारण करते हैं। तो वहां मत चलो, हमें डर है कि तुमको कोई चुरा लेगा, जो आगे लीला होने वाली है वो भगवान के मुख से निकल रही है, हो सकता है आगे तुम्हारा हरण हो जाए, तुम चोरी चले जाओगे, इसलिए मत चलो, निश्चर निकर नार नर चोरा। ये दूसरी बात अन्य भी भगवान बताए कि रास्ता चलना है, तुम्हारा कोमल पैर है। अच्छा, भोजन की जहां तक बात है, भोजन सब समय एक जैसा नहीं मिलता है, कंद मूल खाना पड़ेगा, जमीन पर सोना पड़ेगा। भूमि शयन बलकल वसन असन कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलाई सब ही समय अनुकूल। हे प्रिय, तुमको जमीन पर सोना पड़ेगा, कितने अच्छे अच्छे गद्दे पर तुम सोती हो, यदि वन में चलती हो तो जमीन पर भूमि पर सोना पड़ेगा बिना बिस्तर के। भूमि शयन बलकल वसन, और बलकल वसन पहनना पड़ेगा, पेड़ की छाल वन में पहननी पड़ेगी। वन में कोई ऐसा कारखाना या वस्त्र बिनने वाले लोग नहीं होते, तो केले का पत्ता पहन करके या भूर्ज तरु की छाल पहन करके रहना पड़ता है। भूमि शयन बलकल वसन, ऐसा वस्त्र पहनना पड़ता है कि उसे अंग छिल जाता है कहीं कहीं। भूमि शयन बलकल वसन असन कंद फल मूल, और कंद फल और मूल जो मिल गया वही भोजन होता है। ते की सदा सब दिन मिलन, वो भी सब समय सब वस्तुएं नहीं मिलती। ऐसा नहीं जाओ स्टोर से बस खरीद लाओ, कोई भी वस्तु एक समय मिल जाती है, एक जगह पर मिल जाती है। सब समय और सब स्थान में सब वस्तुएं नहीं मिलती है। सब ही समय अनुकूल, सभी चीजें समय पर मिलती है, समय के अनुसार मिलती है, अपने अपने सीजन में मिलती है। इसलिए तुम चलने का हठ मत करो। यह सुनकर सीता जी ने उत्तर दिया है, वो बहुत ही अच्छा है। तो ये माता कौशल्या के आगे बोलने में बहुत संकोच कर रही थी, लेकिन फिर भी बोलने लगी। प्राणनाथ ने हमें ऐसी शिक्षा दिया है जिससे हमारा हित हो, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो, लेकिन मैं पुनि समुझ देख मन माही पिय वियोग सम दुख जगना। लेकिन मैं भी वो भगवान से कह रहे कि हे प्रियतम, आपने हमें जो सुख दिया, आपने हमें हमसे जो कहा वो तो ठीक है, लेकिन मैं भी विचार करके देख चुकी हूँ कि अपने पति से वियोग के समान एक स्त्री के लिए और कोई बड़ा दुख नहीं। ये वियोग सम दुख जगना है। यदि पत्नी को दूर रहना पड़े पति से तो यह पत्नी के लिए बहुत बड़ा दुख है। इसके समान हमें पहाड़ नदी या बाघ भालू आदि से मिलने वाला दुख नहीं। ये वियोग सम दुख जगना है। और सीता जी ये कहती हैं कि हे प्राणनाथ, अब सुंदर है, सुजान है, और हे रघुकुल के चंद्रमा, आपके बिना सुरपुर नरक समान, आपका संग न रहे तो देवराज इंद्र का नगर भी मेरे लिए नरक। मैं अयोध्या में नहीं रहना चाहते, आप वन में जाएंगे और मैं अयोध्या में रहूंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा जीवन तो आपके लिए है। इसके बाद अन्य संबंधों को बता रही हैं, माता पिता भगनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जहलग नाक नेह और नाथे प्रिय बिन तियहि तरणिते तात। बहुत संबंध बता रही है कि स्त्री का दो परिवार से संबंध होता है, पिता के परिवार से और पति के परिवार से। तो पहले पिता के परिवार को गिना रही है, मात पिता भगनी प्रिय भाई। पिता के परिवार में कौन कौन होते हैं? माँ होती है, पिता और बहन भगनी और भाई, और बड़ा ही सुखद परिवार होता है। पिता के घर में वास्तव में बड़ा ही आदर होता है बच्ची का, वहां पर उससे बहुत कार्य नहीं कराया जाता है, माता पिता बहुत प्रेम करते हैं, देखा गया। ससुराल में आने पर बेचारी को बहुत खटना पड़ता है, लेकिन नगर में माता पिता बहुत सेवा नहीं कराते, खास करके पिताजी तो बहुत काम नहीं कराना चाहते, माँ की सेवा वो करती है। तो सदन सुखदाई, माता पिता का भवन बहुत अच्छा है, सब ठीक है, और इधर पति के परिवार में सास ससुर गुरु सजन सहाय, यहाँ गुरु से तात्पर्य है ससुर के पिताजी। इस ससुराल में सास ससुर हों और गुरुजन और बहुत ही सुंदर सुशील पुत्र भी हो, लेकिन जहां तक नेह और नाता की बात है, स्नेह और संबंध की, पति के बिना ये सब संबंध सूर्य से भी अधिक दाहक होते हैं। परनिहुते ताते, ताते का अर्थ दाह। ये सब ठीक है, माता पिता ठीक है, भाई ठीक है, या सास ससुर सब ठीक है, कब, जबकि पति के साथ। पति को छोड़ करके और इनकी सेवा करे तो ये सब संबंध पत्नी के लिए दाहक है, अच्छा नहीं, जलाने वाले। ये बहुत ही उत्कृष्ट बात कही जा रही है। किसी स्त्री को सदा यही भाव रखना चाहिए कि हमारे वास्तव में संबंधी तो हमारे पति है, और कभी तिरस्कार करके पति का है और पत्नी नैहर में जाकर रहे दो चार साल या दो चार महीना, ये ठीक नहीं। अगर वो श्रीमती जी भाग कर नैहर चली गई है और पति अपने हाथ से रोटी पका रहे, तो किस दिन के लिए वो थी बताइए, किस दिन के लिए। और संबंध ठीक है कब, जबकि पति साथ में हो। तो पति के नाते से सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, देवर की सेवा करनी चाहिए, धर्म बता रहे। एक नारी के मुख से, सीता देवी के मुख से यह धर्म का उपदेश हो रहा है प्रकाश। और जहां तक तन धन धाम सुहृत परिवार, जितना भी तन धन धाम राज्य है, ये प्रियतम के बिना सब सुख के समाज, ये विहीन सब सुख समाज। स्त्री के पास यदि धन भी है, राज्य है, सब कुछ है, परिवार भरा पड़ा है, लेकिन पति नहीं है तो शोक ही शोक, पति विहीन सब शोक समाज, ये सारा शोक उत्पन्न करने वाला होता है। किसी पत्नी के जीवन में मुख्य वस्तु है पति। जिय बिनु देह नदी बिनु नारी, बारी तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। सीता जी कहते हैं जैसे शरीर बिना प्राण के ठीक नहीं लगता है, प्राण के बिना जैसे शरीर निहिसार है, और पानी के बिना नदी की शोभा नहीं होती है, उसी तरह से पुरुष के बिना नारी की शोभा नहीं, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। इस प्रकार से वो कह करके और आगे कहती हैं कि हमें आपके साथ चलने में कोई भी दुख नहीं होगा। खगमृग परिजन नगर वन बलकल वसन दुकूल, बलकल विमल दुकूल, हाँ ठीक। तो जब आप हमारे साथ रहेंगे तो वन के जो खग मृग हैं वही हमारे परिवार के होंगे। जब आप अयोध्या में नहीं रहेंगे तो फिर अयोध्या में हमारा कोई संबंधी नहीं है। आप वन में रहेंगे तो, और वन में मैं चलूंगी तो वहां के पक्षी और पशु भी हमारे परिवार के लोग होंगे। खगमृग परिजन और नगर वन, वह वन ही हमारे लिए नगर होगा जब आपके साथ रहूंगी, और नया नया ताजा ताजा बलकल वस्त्र पहनूंगी, वही हमारे लिए रेशमी साड़ी होगा या जो भी होगा, और हमारे लिए अमृत के समान कंद मूल फल का आहार होगा। सैकड़ों अयोध्या के समान हमारे लिए वन होगा, सैकड़ों राजमहल के समान। और जब मैं पत्ते पर या घास पर आपके साथ बैठूंगी तो वही मेरे लिए कामदेव की सज्जा होगी, और कंद मूल ही हमारे लिए अमृत का आहार होगा। जब मैं क्षण क्षण में आपका बदन देखूंगी, शरद विमल के जो बदन निहार, रास्ता चलते मुझे कोई थकावट नहीं होगी, क्योंकि मैं आपका शरदकालीन चंद्रमा के समान सुंदर मुख देखूंगी और आपके चरण कमल को देखती रहूंगी, मुझे कोई दुख नहीं होगा। दुख तो आपके विरह में होगा, इसको मैं नहीं सह पाऊंगी। इस प्रकार से सीता जी और भी बातें कह रही हैं। बाद में सीता जी ने कहा कि हे प्रियतम, मैं आपकी सेवा करने के लिए चलना चाहते हूँ, आप ऐसा मत समझे कि मैं आप पर भार बनूंगी। सब ही भांति प्रिय सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरी हूँ। आप रास्ता चलते चलते थक जाएंगे तो रास्ते के थकान को मैं मिटाऊंगी, पाए पखारी बैठ तर छाही कन्हा बाव मुदित मनमाय। किसी वृक्ष के नीचे आपको बैठाऊंगी और पानी लेकर के आपका चरण धोऊंगी। चरण धोने के बाद मैं बन से किसी पत्ता से पंखा बना करके आपको पंखा झलूंगी। उस समय आपके मुख पर जो पसीने के बूंदे होंगे उससे आपका मुख और सुंदर लगेगा। ऐसे सुंदर मुख को देख करके हमारे के कहां दुख रहेगा। और सममय तृण तरु पल्लव दासी पाए पलोटी सब निशिदासी। मैं देखूंगी कहीं समतल भूमि पर घास बिछाऊंगी कोमल कोमल और पत्ता तोड़कर बिछाऊंगी और उस पर आप सोएंगे। मतलब मैं आपके लिए बिछावन बिछाऊंगी। सम महित्रिन तरु पल्लव दासी पाए पलोटी सब निशिदासी और रात भर मैं आपका चरण दबाऊंगी। ये है तैयारी सीता जी। सब निशी रात रात संपूर्ण रात्रि में आपका चरण दबाऊंगी। यही मेरे लिए सुख होगा। पाए पलोटे सब निशिदासी को प्रभु संग मही चितवन हारा सिंह बधुई जिन सशक सियारा। और आपने कहा कि नर नारी को चुराने वाले राक्षस घुमा करते हैं, तो मैं आपके साथ रहूंगी तो कौन मुझ पर दृष्टि डाल सकता है? क्या सिंह की स्त्री के तरफ कभी सियार और कुत्ते देख सकते हैं? खरगोश और सियार देख सकते हैं? आप हाथ में धनुष बाण लेकर रहेंगे तो को प्रभु संग मही चितवन निहारा। कौन है संसार में जो मुझ पर कुदृष्टि डाल दे? रावण भी तब सीता जी पर कुदृष्टि डाला जब भगवान दूर चले गए थे। तो आपके साथ रहने पर किसका साहस होगा जो मेरे तरफ आंख उठा करके देख सके? जैसे सिंह की पत्नी पर शशक और सियार, खरगोश और सियार नहीं देख सकते, ऐसे मुझ पर कोई कुदृष्टि नहीं डाल सकता। वैसे तो आप सर्वतंत्र स्वतंत्र स्वामी हैं। आप अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं लेंगे, लेकिन निश्चित समझ लीजिए कि आप उधर अयोध्या जाएंगे, आप वन में जाएंगे अयोध्या छोड़कर, और उसी समय मैं श्मशान में जाऊंगा, मेरा शरीर जाएगा, मैं मरूंगा निश्चित, मैं जी नहीं सकती हूँ आपके बिना। तो भगवान यह सुनकर कहेगा ठीक चलो। माता जी के सामने ही भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, शोक छोड़ दो, चलो वो चलने के लिए तैयार हो। इस प्रकार से भगवान के वाक्य या सीता जी के वाक्य मनन करने योग्य हैं। वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में बहुत विस्तार से इन सब बातों का वर्णन किया गया है। गोस्वामी जी ने प्राय वाल्मीकि रामायण का अनुवाद ही किया, उसमें एक विशेष बात सीता जी यह भी कहती हैं कि मैं तो वन में निश्चित चलूंगी। तब भगवान ने कहा कि मैं अपने पिता की आज्ञा से वन में जा रहा हूं, तुमको तो वन में जाने की आज्ञा नहीं हुई है। तो सीता जी कहती है कि हमारे पिताजी ने भी हमें आज्ञा दिया है, कुछ उन्होंने आज्ञा दिया है कि तुम्हारे पति जहाँ रहे वहीं रहना है, उनकी सेवा करना। तो आप अपने पिता की आज्ञा से बन जा रहे हैं तो मैं भी अपने पिता की आज्ञा से बनने जा रहा हूँ। आपको 14 वर्ष के लिए केवल आज्ञा है, हमको जीवन भर के लिए आज्ञा है आपकी सेवा करने, इसलिए मैं तो अपने पिता की आज्ञा का निर्वाह करूंगी। भगवान ने कहा ठीक है चलो। तो तैयार हो गए, कोई बहुत सामान नहीं जमाना था, कुछ लेना नहीं था, केवल धनुष बाण लेना था और साथ में खड़ग और कुल्हाड़ी। लक्ष्मण भी लेकर चलते थे। जंगल में कहीं कहीं ऐसी झाड़ियां पड़ जाती थी जिनको काट कर पार होना पड़ता था, तो उसके लिए कुल्हाड़ी थी और खड़ग लिए थे, तलवार और धनुष बाण। वन घोर स्थान है, संकटमय स्थान है, इसीलिए इस तैयारी के साथ तो जाना ही। तलवार लेकर गए थे तभी तो लक्ष्मण जी ने सुर्पणखा का नाक कान काटा तलवार से। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि कुल्हाड़ी तलवार और बाण धनुष लेकर के चले थे, बाकी अयोध्या से और कोई रुपया पैसा लेकर नहीं, कोई चेकबुक भी लेकर नहीं गए थे, वहां क्या काम करे। तो चले भगवान वन में, तब तक यह समाचार लक्ष्मण जी को लगा। लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाया। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठि धाय, सोच हृदय विधिका निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। लक्ष्मण जी ने सुना कि भगवान वन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो व्याकुल बिलक बदन से दौड़े भगवान के पास और आए। पहले तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में इस तरह से लिखा गया, आप कहाँ जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैं पिता के धर्म की रक्षा के लिए उनकी आज्ञा से वन में जा रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी क्रोध में हो गए, उन्होंने कहा क्या दशरथ कहा है कि वन में जाएंगे, मैं अभी दशरथ का वध कर देता। लक्ष्मण जी बिल्कुल धनुष मार लेकर तैयार थे और क्रोध में हो गए। ये यह अयोध्या आपका राज्य है, आप इसके अधिकारी हैं, यह दशरथ का नहीं है न भरत का। अभी मैं दशरथ को मार देता हूँ और धनुष बल से मैं आपका राज्य अभिषेक कराऊंगा। सारे मंत्री सारी जनता आपके पक्ष में है, आपका राज्य अभिषेक होगा, वन में आप नहीं जाएंगे। और भरत यदि आएगा और उसने कुछ भी दूसरी बात कहा तो वह भी अपने पिता की तरह सो जाएगा, मर जाएगा, उसको भी मारूंगा। लक्ष्मण जी बिल्कुल लाल लालाके करके बोल रहे थे, कौन है जो आपको वन में भेज सकता है। भगवान समझाने लगे, बहुत प्रकार समझाए कि देखो भैया, यदि पिता धर्म का पालन करने में असमर्थ हो तो पुत्र का कर्तव्य है कि उस धर्म को पूरा करे। हमारे पिताजी परबस हैं, उन्होंने वचन कहा है, उनके वचन में और उनमें कोई भेद नहीं। यद्यपि उन्होंने अपने मुख से मुझे नहीं कहा वन में जाने के लिए, लेकिन मेरी माँ को कैकेयी को जब उन्होंने कहा है तो उनका ही कहना है, तो पिता के रोकने के बाद भी मैं नहीं रुकूंगा, तुम शांत हो जाओ। तब लक्ष्मण जी का भाव बदल गया, तो ये कहा ठीक है तो मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं तो आपके साथ रहूंगा। भगवान के पास गए, व्याकुल थे, सोच रहे थे क्या होगा, भगवान हमको साथ लेंगे कि छोड़ देंगे। बंधु की दशा को भगवान ने देखा, देह गेह सब समित्रिन तोरे। राम ने देखा कि लक्ष्मण का अयोध्या से कोई संबंध नहीं है, तो सबकी आसक्ति छोड़ चुका है। अरे जो अपने बाप को ही मारने के लिए तैयार था उसकी क्या आसक्ति होगी, बताइए। यहाँ लक्ष्मण जी की भक्ति दिखाई गई, उन्होंने स्पष्ट आगे भगवान से कह दिया है, गुरुपित मातु में जान काहू कहूं स्वभाव नाथ पति आप, मैं नहीं जानता हूं कि मेरा गुरु कौन है और मेरा पिता कौन है, मैं तो केवल आपको जानता हूं। जो भगवान ने कह दिया लक्ष्मण जी से कि हे भाई, हमारे प्रेम के बस में कायर मत बनो, तुम अयोध्या में रहो, हमारे पिताजी हमारे विरह में दुखी रहेंगे। भरत भवन रिपुसूदन नाही, घर पर भरत नहीं है और रिपुसूदन शत्रुघ्न जी नहीं। भगवान कह रहे हैं शत्रुघ्न जी घर पर नहीं है, भरत घर पर नहीं है और राजा मेरे विरह के दुख में है, इस दशा में रहूं करहूं सब कर परितोषु, नाही प्रताप होई बड़ दोषु। इस समय तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अयोध्या में रहो और सबको शांति दो, सुख से रखो, नहीं तो जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा निश्चित नरक में गिरता है। आज के युग में जितने राजा हैं उनका रिजर्वेशन नरक में हो चुका होगा, या तो रेलवे का 2 महीना पहले होता है ना, वो तो कई वर्ष पहले हो गया। जनता के धन को खाते हैं और सेवा में नहीं लगाते, कितनी जनता दुखी है, सब प्रकार से सेवा लोग नहीं कर रहे। यह भगवान का वाक्य है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा निश्चित नरक का कैंडिडेट होता है, नरक का अधिकारी। तो हमारे पिता को नरक से बचाने के लिए, हमको नरक से बचाने के लिए, भारत को नरक से बचाने के लिए तुम अयोध्या में रहो और प्रजा का पालन करो, कोई राजा नहीं है, एक प्रकार से अराजकता है। मैं वन में जा रहा हूँ, पिताजी ऐसे ही है, उनकी तो हालत ठीक नहीं है, कब क्या हो जाएगा, उनका शरीर भी छोड़ सकता है और भरत है नहीं, इसलिए प्रजा का पालन करो। कई प्रकार से भगवान ने कहा माता पिता की सेवा करना है कर्तव्य है, उनसे भी कहा कि तुम हट मत करो, मेरे साथ चलने का दुराग्रह मत करो। लक्ष्मण जी रोते हुए कहने लगे कि हे नाथ, धर्म नीति और ज्ञान का उपदेश मुझे अच्छा नहीं लगता है, यह नीति शास्त्र उन्हें पढ़ाना चाहिए जिन्हें स्वर्ग प्रिय है। आप कहते हैं कि राजा ठीक से शासन नहीं करता है तो नरक में चला जाता है, लेकिन हमें स्वर्ग की इच्छा नहीं है कि हम स्वर्ग में जाए, या गति भलाई आदि। मैं तो आपके स्नेह से पाला गया हूँ, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु की ले मराला। मैं आपके स्नेह से पाला गया हूँ, मैं सपने में भी नहीं समझा कि मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, मेरा गुरु कौन है। इस कहने का मतलब मैं किसी को कुछ जानता ही नहीं, मैं तो आपको जानता हूँ कि आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माँ हैं, मेरी माँ है, आप ही मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे सब कुछ आप। गुरुपित मात न जानो काहू, कहो स्वभाव नाथ पति आओ। मैं अपने स्वभाव बता रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं जानता, मैं आपको जानता, इसलिए मैं तो आपके साथ चलूंगा। यदि आप नहीं ले चलेंगे तो मेरा क्या बस है, तो मुझे मरना पड़ेगा आपके वियोग में। किसी हंस के बच्चे पर मंदराचल नहीं उठाया जा सकता है, डाला जा सकता है। आप हमको अयोध्या का भार मत दीजिए, नीति मत सिखाइए, हमसे नहीं चलेगा। जहां आप रहेंगे वहां मैं रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, बस मेरे जीवन का यही सुख है। जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से आग्रह किया तो भगवान ने उनको भी कह दिया ठीक है, परिहरि सो चलो वन साथ, ठीक है कोई बात नहीं, वन में चलो। लक्ष्मण जी को तैयार कर, और इसके बाद तीनों अर्थात श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी गए महाराज दशरथ के पास। अब वो माँ से विदा हो चुके थे। इसके पहले मैं एक बात भूल गया कहना, वन में जाने का जब लक्ष्मण जी ने आग्रह किया तो भगवान ने कहा कि ठीक है चलो, लेकिन अपनी माँ से आज्ञा ले लो। ये किसी भी पुत्र पर माँ का सबसे पहला अधिकार है, माता पिता पहला अधिकारी। आज कहीं फॉर्म भरिए तो पिता का नाम लिखवाते हैं, इसका अर्थ है कि तुम किसके हो, ये अर्थ हुआ। और किसी का तो भाई आदि का नाम नहीं लिखवाते, पिता का नाम लिखवाते। तो माता पिता से आज्ञा लेना ये प्रथम कर्तव्य है। लक्ष्मण जी तो नहीं चाहते थे, आज्ञा की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन भगवान के जबरदस्ती करने से गए। जाय मात पद ना यव माथा, मन रघुनंदन जान के साथ जा करके माँ को प्रणाम कर रहे सुमित्रा को, लेकिन उनका मन कृष्ण के साथ, मतलब रघुनंदन के साथ, भगवान के साथ ही मन रह गया। शरीर जाकर प्रणाम किया, मतलब बिना मन के प्रणाम किया, ये अर्थ। एक फॉर्मालिटी पूरा किया, मन तो वही था कि जल्दी से जल्दी जाएं भगवान के साथ, लेकिन भगवान के कहने से जाकर प्रणाम किए। उन्होंने कहा, उसने पूछा कि क्या बात है, कैसे आए, तुम्हारी ऐसी कैसी दशा है, तो उन्होंने सारी बात कह दिया कि कई कई ने दो बार मांगा है और राम जा रहे हैं वन में, मैं जाना चाहता हूँ। तो बेचारी उस तरह से सहम गई, जिस प्रकार से तो चारों तरफ जंगल में आग लगी हो और कोई हरिणी बीच में फंस गई हो, अब क्या करो। यदि वो कहते है कि नहीं नहीं राम को वन में नहीं जाना चाहिए तो बंधु से विरोध होता है, घर में कलह उत्पन्न होगा, और कहती है कि जाओ तो सर्वनाशी। तो धीरज धारण किया कुअवसर जान करके, और सहज सुहृद बोले मृदुवाणी, अपने पुत्र का वो सहज हित करना चाहती थी, वास्तविक माँ थी सुमित्रा, माँ को जैसा होना चाहिए वैसे थी। वह बेचारी ये नहीं चाहती थी कि बेटा मेरी सेवा में रहे, दुख न सहे वन में जा करके, सहज सुहृद थी, सहज हित करना चाहती थी, और जानती थी राम की महिमा को। तो सुनते ही उसने कहा कि पात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भात समय ही। हे पुत्र प्रिय लक्ष्मण, तुम्हारी माँ तो सीता है। इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि ये भी कह रहे कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। पात तुम्हार मात वैदेही, तुम्हारी माँ तो वैदेही है और पिता राम सब भात समय, और तुम्हारे पिता वास्तव में श्री राम है। यह कहने का आशय यह है कि सीता में तुम्हारे प्रति वात्सल्य है, स्नेह है, और राम में भी तुम्हारे प्रति स्नेह है, तो तुम्हारे वास्तविक माता पिता सीता और राम है।